ये रेडियो नेपाल है। अब मुकेश कुमार मिश्र से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। मध्य पश्चिम विश्वविद्यालय से विभिन्न संकायों से 3,841 विद्यार्थी हुए दीक्षित। संविधान में आवश्यकता अनुसार परिमार्जन करते हुए चलेंगे प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली का कथन। सरकार ने चैती धान का समर्थन मूल्य प्रति क्विंटल 2800 रूपये किया निर्धारित। और सीरिया के नए शासक समूह और अपदस्थ राष्ट्रपति बसर अल असद समर्थित समूह के बीच हुई झड़प में 70 से अधिक लोगों की हुई मौत। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने कहा कि संविधान का प्रभावकारी क्रियान्वयन करने के साथ ही आवश्यकता अनुसार परिमार्जन करते हुए आगे बढ़ते रहने की सरकार की सोच है। आज कर्णाली प्रदेश सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ओली ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि नेपाल के संविधान ने सभी को समान अधिकार दिया है और सभी को प्रतिस्पर्धा और क्षमता प्रदर्शन के अवसर प्रदान किए हैं, इसलिए इसकी रक्षा, क्रियान्वयन और देश हित में आवश्यक संशोधन करना सरकार का कर्तव्य है। मध्य पश्चिम विश्वविद्यालय के विभिन्न तहों और संकायों के 3,841 छात्र दीक्षित हुए हैं। सुरखेत के वीरेंद्र नगर स्थित मध्य पश्चिम विश्वविद्यालय के केंद्रीय कार्यालय में आज तीसरा दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया। इस समारोह में विश्वविद्यालय के विभिन्न स्तरों और संकायों के कुल 3,841 छात्रों को दीक्षित किया गया। इनमें विज्ञान एवं प्रविधि, व्यवस्थापन, इंजीनियरिंग, कानून, शिक्षा शास्त्र, मानविकी और सामाजिक विज्ञान सहित सभी संकायों और स्कूलों से स्नातक तक के 2,189 छात्र शामिल हैं। इसके अलावा स्नातकोत्तर स्तर के विभिन्न कार्यक्रमों में सफलता प्राप्त करने वाले 1,663 छात्र और व्यवस्थापन संकाय के दर्शनाचार्य पूरा करने वाले 19 छात्रों को भी दीक्षित किया गया। प्रधानमंत्री एवं विश्वविद्यालय के कुलपति केपी शर्मा ओली ने समारोह में उत्कृष्ट छात्रों को पुरस्कार भी प्रदान किए। संघीय संसद द्वारा 5 अध्यादेश स्वीकृत किए जाने के बाद सरकार ने इनसे संबंधित प्रतिस्थापन विधेयक संघीय संसद में पेश करने का निर्णय किया है। इसी फागुन 21 गति को हुई मंत्रिपरिषद बैठक के निर्णयों को साझा करने के लिए आज संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्रालय में बुलाए गए पत्रकार सम्मेलन में सरकार के प्रवक्ता एवं संचार मंत्री पृथ्वी सुब्बा गुरुंग ने इस बात की जानकारी दी। मंत्री गुरुंग ने बताया कि मंत्रिपरिषद की बैठक ने चालू आर्थिक वर्ष 2081-82 के लिए चैती धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,809.69 रूपये प्रति क्विंटल निर्धारित करने का निर्णय किया है। बैठक ने विदेश यात्रा करने वाले प्रतिनिधिमंडल में 1/3 महिलाओं की उपस्थिति अनिवार्य करने का निर्णय किया है। साथ ही जनता के काम में बाधा न आने देने के मद्देनजर एक ही मंत्रालय के सचिव और मंत्री एक साथ विदेश यात्रा पर न भेजने का निर्णय किया है। इसके अलावा संविधान संशोधन के मुद्दे पर मंत्री गुरुंग ने कहा कि पहले मुद्दों की पहचान की जाएगी और सभी पक्षों के सुझाव के आधार पर साझा सहमति बनाई जाएगी। उन्होंने यह भी बताया कि सरकार का मुख्य एजेंडा देश की शासन प्रणाली को व्यवस्थित करना, सुशासन स्थापित करना और अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है। प्रतिनिधि सभा की आज की बैठक में नवीकरणीय ऊर्जा और ऊर्जा दक्षता संबंधी विधेयक 2081 पर विचार करने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत किया गया। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मंत्री दीपक खड़का द्वारा प्रस्तुत किए गए नवीकरणीय ऊर्जा और ऊर्जा दक्षता संबंधी विधेयक 2081 पर विचार करने के प्रस्ताव पर चर्चा के बाद बैठक में इसे सर्वसम्मति से स्वीकृत किया गया। बैठक में सांसदों ने देश की विभिन्न समसामयिक स्थितियों के बारे में जानकारी देते हुए जनता को राहत का अनुभव कराने के लिए सरकार का ध्यान आकृष्ट किया। बैठक के शून्यकाल, आकस्मिक और विशेष समय में बोलते हुए सांसदों ने अपने क्षेत्रों में सड़क यातायात, सार्वजनिक सेवा प्रवाह, महिलाओं की हर जगह 50% भागीदारी सुनिश्चित करने जैसे मुद्दों पर सरकार का ध्यान आकृष्ट किया। इसके अलावा बैठक में सांसदों ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की पूर्व संध्या में सभी को शुभकामनाएं व्यक्त करते हुए कहा कि महिलाओं के साथ अभी भी भेदभाव हो रहा है, इसके अंत के लिए सभी को मिलकर प्रयास करने की जरूरत है। बैठक के शून्यकाल, आकस्मिक और विशेष समय में सांसदों द्वारा उठाए गए अपने मंत्रालयों से संबंधित सवालों के जवाब देते हुए भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मंत्री देवेंद्र दाहाल ने कहा कि सड़क पूर्वाधार के विस्तार और मरम्मत के काम चल रहे हैं, जिसका तत्काल परिणाम नहीं दिखेगा लेकिन कुछ समय में अच्छी प्रगति देखने को मिलेगी। उन्होंने ये भी कहा कि बाढ़ और भूस्खलन से क्षतिग्रस्त राजमार्गों के वैकल्पिक मार्गों का प्रबंधन सरकार की प्राथमिकता में है और बारिश से पहले इनका प्रबंधन किया जाएगा। प्रतिनिधि सभा की अगली बैठक फागुन 27 कृत्य मंगलवार को दोपहर 1 बजे के लिए बुलाई गई है। समाचार आप रेडियो नेपाल से सुन रहे हैं। बस थोड़ी देर विज्ञापन।
नेपाल टेलीकॉम को 4G भिडियो कल गर्दा नो बोर्जी नेपाल टेलिकम को 4G
सबैको यो विश्वास हो नि नेपाल टेलिकम को 4G
गेम खेल्दा नि टेन्सन नो जी नेपाल टेलिकम को 4G आफ्नो भन्ने आफ्नै हो जी नेपाल टेलिकम को 4G
नेपाल टेलिकम राष्ट्रको संचार।
अब बाकी समाचार। राष्ट्रीय सभा की आज की बैठक में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का आर्थिक वर्ष 2079-80 का 6वां वार्षिक प्रतिवेदन और आर्थिक वर्ष 2080-81 का 7वां वार्षिक प्रतिवेदन पेश किया गया। इसके अलावा बैठक में प्रतिनिधि सभा से प्राप्त बैंकिंग अपराध और सजा द्वितीय संशोधन विधेयक 2080 को विधायन व्यवस्थापन समिति में विस्तृत चर्चा के लिए भेजा गया। इससे पहले राष्ट्रीय सभा की बैठक में सांसदों के प्रश्नों के जवाब में कृषि तथा पशुपंछी विकास मंत्री रामनाथ अधिकारी ने बताया कि सरकार कृषि उत्पादन के आयात प्रतिस्थापन के लक्ष्य के साथ विभिन्न कार्यक्रम चला रही है, जिसके कारण खाद्यान्न और फल फूल के उत्पादन में वृद्धि हो रही है और पशु उत्पादन में देश आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है। नेपाल में ही कृषि उर्वरक उत्पादन करने की सरकार की योजना के बारे में एक अन्य प्रश्न के जवाब में मंत्री अधिकारी ने बताया कि रासायनिक उर्वरक कारखाना स्थापित करने का विषय अलग अलग समय में सरकार की वार्षिक नीति और कार्यक्रम में शामिल होती रही है, लेकिन फिलहाल ये योजना पूर्व संभाव्यता अध्ययन के चरण में है। राष्ट्रीय सभा की अगली बैठक फागुन 25 कृत्य रविवार दोपहर 1:15 पर बुलाई गई है। सभामुख देवराज घिमरे ने कहा कि प्रेस स्वतंत्रता को कुंठित करने वाला कोई भी कानून प्रतिनिधि सभा से नहीं बनेगा। आज राजधानी में आयोजित एक कार्यक्रम में सभामुख घिमरे ने कहा कि संविधान प्रदत्त प्रेस स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता की भावना के विपरीत न जाने की बात पर वे स्पष्ट हैं। संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री पृथ्वी सुब्बा गुरुंग ने सामाजिक संजाल प्लेटफार्मों को मंत्रालय में सूचीकृत होने का आग्रह किया है। आज संचार मंत्रालय में बुलाए गए प्रेस कॉन्फ्रेंस में मंत्री गुरुंग ने ऐसा आग्रह किया। इससे पूर्व मंत्रालय ने सूचीकृत होने के लिए एक्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसे सामाजिक संजाल प्लेटफार्मों को तकाजा किया था। उन्होंने बताया कि सामाजिक संजाल के प्रयोग को व्यवस्थित करने वाली निर्देशिका 2080 के तहत सामाजिक संजालों का मंत्रालय में सूचीकृत होना अनिवार्य है। नेपाली कांग्रेस के सभापति शेरबहादुर देउवा ने कहा कि स्थानीय तह जनता की सबसे नजदीकी सरकार है। आज महोत्तरी की भारतीय सीमावर्ती मनरा सिसवा नगरपालिका के नवनिर्मित प्रशासकीय भवन का उद्घाटन करते हुए सभापति देउवा ने जनप्रतिनिधियों को सुझाव दिया कि वे प्रभावकारी सेवा प्रवाह में दत्तचित्त होकर जुटे रहें। नेकपा माओवादी केंद्र के अध्यक्ष पुष्पकमल दहाल प्रचंड ने देश में मौजूद भ्रष्टाचार और अन्य अनियमितताओं को समाप्त करने के लिए सभी तहों और पीढ़ियों के लोगों को एकजुट होने और संबंधित निकायों तथा प्रतिनिधियों को सचेत करने की बात पर जोर दिया है। आज सरलाही के मलंगवा में आयोजित हुलाकी राजमार्ग केंद्रित जनता के साथ माओवादी तराई मुधे जागरण अभियान के कार्यक्रम में उन्होंने इस बात का जिक्र किया। गृहमंत्री रमेश लेखक ने कहा कि भूकंप प्रभावित क्षेत्र में निजी आवास पुनः निर्माण का काम शुरू हो चुका है। आज बछांग में भूकंपीय पुनः निर्माण तथा पुनःस्थापना परियोजना क्रियान्वयन इकाई कार्यालय का उद्घाटन करते हुए गृहमंत्री लेखक ने ये बात बताई। उन्होंने कहा कि भूकंप प्रभावित जिलों में पुनः निर्माण के लिए मापदंड नियमावली के साथ ही आवश्यक बजट की व्यवस्था करके जिला कार्यालय से ही निर्माण की शुरूआत की गई है। काठमांडू के वसंतपुर स्थित हनुमान ढोका दरबार में 3 मंजिला चीर खड़ा किया गया है। हनुमान ढोका दरबार की गद्दी बैठक के दक्षिण की तरफ चीर खड़ा किया गया। आज सुबह 8:30 के शुभ मुहूर्त पर मानधर समुदाय के लोगों ने रंग बिरंगे ध्वज सहित चीर खड़ा करके एक दूसरे को गुलाल लगाकर होली शुरू होने की घोषणा की। बता दें कि आज के दिन पशुपति क्षेत्र हनुमान ढोका दरबार के सुंदरी चौक ललितपुर पाटन दरबार क्षेत्र के कृष्ण मंदिर प्रांगण में भी रंग बिरंगे चीर खड़े किए जाते हैं। इस साल होली के लिए फागुन 29 गते देश के हिमालयी और पहाड़ी क्षेत्रों में और चैत 1 गते तराई क्षेत्र में सार्वजनिक छुट्टी दी गई है। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। सीरिया की राजधानी दमिश्क में नई सरकार के प्रति वफादार सीरियाई सेनाएं और सत्ता से बेदखल किए गए असद शासन के समर्थकों के साथ भीषण लड़ाई की खबरें हैं। देश के उत्तर पश्चिमी तटीय क्षेत्र में रूसी नियंत्रित एयरबेस के नजदीक लताकिया प्रांत में हुई झड़पों में दर्जनों लोग मारे गए हैं। दिसंबर में बशर अल असद के पतन के बाद से सीरिया की इस्लामी सरकार से जुड़ी सेनाओं के साथ अब तक की हिंसक झड़प है। मारे गए लोगों की संख्या के बारे में अलग अलग अनुमान है और गुरुवार देर रात सीरिया स्थित स्टेट न्यूज एजेंसी से मिली खबर के मुताबिक सरकार समर्थित बलों के हमले में लगभग 70 पूर्व सरकारी लड़ाके मारे गए हैं, जबकि 25 से अधिक को जबलेह और उसके आसपास के क्षेत्रों में पकड़ लिया गया है। इसके अलावा एएफपी समाचार एजेंसी ने एक युद्ध पर्यवेक्षक का हवाला देते हुए कहा कि कुल 48 लोग मारे गए, जिनमें 16 सरकारी सुरक्षाकर्मी, 28 असद समर्थक लड़ाके और 4 नागरिक शामिल हैं। सीरिया के रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता कर्नल हसन अब्दुल गनी ने सरकारी मीडिया के माध्यम से लताकिया में लड़ रहे असद समर्थकों को चेतावनी जारी की है। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 20 से 22 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 9 से 11 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 10.1 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मध्य पश्चिम विश्वविद्यालय से विभिन्न संकायों से 3,841 विद्यार्थी हुए दीक्षित। संविधान में आवश्यकता अनुसार परिमार्जन करते हुए चलेंगे, प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली का कथन। सरकार ने चैती धान का समर्थन मूल्य प्रति क्विंटल 2800 रूपये किया निर्धारित। और सीरिया के नए शासक समूह और अपदस्थ राष्ट्रपति बशर अल असद समर्थित समूह के बीच हुई झड़प में 70 से अधिक लोगों की हुई मौत। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभ रात्रि।